करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते वही अर्हंता दिवा जो विद्यादि सागर सुधी आदि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजोंगे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने कर्मों से ही इस संसार में बंधे हुए हैं और सोचते हैं कि हम अपने कर्मों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित कर लें जिससे कि हम इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि कर्मों के बंधन की प्रक्रिया के बारे में जो हमारा ज्ञान है उसे हम दूर करें और कर्मों के बंधन की प्रक्रिया को ठीक से समझें। हमारे भीतर जो आसक्ति है, अज्ञानता है और पुरुषार्थहीनता की प्रवृत्ति है, उससे भी हम बचने का प्रयास करें ताकि हम अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत करके और अपने कर्मों के बंधन से इस संसार से मुक्त हो सके। सात कर्म ऐसे हैं जो प्रतिक्षण अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, भावों के अनुसार हमारे साथ बंधन को प्राप्त होते रहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण करने पर वह सात धातुओं में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही हमारे एक भाव के द्वारा ही सात कर्मों में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग अलग अलग निर्धारित हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन वचन काय और अपने भावों को निरंतर संभालते रहें। यहां इस संसार में हम देखते हैं कि कल तक जिसे हम अपना मित्र मान रहे थे आज वही हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करता दिखाई पड़ता है। किसी क्षण देखने में ये आता है कि जिससे हमारी शत्रुता थी या जो हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता था वो आज हमारा उतना ही हितैषी और मित्र हो गया है। संसार में ये विविधता हमें एक संदेश देती है कि शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि कभी मित्रता होने पर ग्लानि मन में आए और मित्र के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना कि वो कभी शत्रु का भाव उसके भीतर जागृत हो तो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगे। कर्मबंध से मुक्त होने की यही सबसे आसान प्रक्रिया है कि हम हर स्थिति में समता भाव धारण कर सकें तो ही हम इस संसार में कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम अगर विचार करें कि जिसे हम अपना मित्र मान लेते हैं, कह रहा हूं क्योंकि शत्रुता और मित्रता हमारी अपनी मान्यता है भैया। यहां इस संसार में न कोई हमारा शत्रु है न कोई हमारा मित्र है, ये दोनों स्थायी भाव नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे द्वारा कुछ क्षण के लिए किसी पर आरोपित कर दिए जाते हैं और उन पर से जितने दिन तक हमें लगता है कि इससे हमारा हित होता है, इससे हमारा काम सदता है, हमें वो हितैषी जान पड़ता है, मित्र जान पड़ता है। जिससे हमारा हित होता नहीं जान पड़ता, हमारा स्वार्थ नहीं सदता, वो हमें शत्रु की तरह जान पड़ता है। तो ये तो हमारी अपनी मान्यता और हमारे द्वारा आरोपित किया हुआ एक संबंध है। तो अगर हम किसी को मित्र मान भी लेते हैं तो उसके साथ अपन देखते हैं कि फिर उसके दोष नहीं दिखाई पड़ते, और जो शत्रु है जिसको हमने शत्रु मान लिया है उसके कभी फिर गुण नहीं दिखाई पड़ते। जबकि सबके भीतर गुण और दोष दोनों हैं, दोष ही दोष होवे ऐसा इस संसार में कोई नहीं है, और गुण ही गुण होवे तो ऐसे तो संसार से पार हो गए सिद्ध भगवान ही हैं, और तो कोई नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के भीतर गुण दोष दोनों हैं तो हम किसी को गुणवान कहकर उससे राग भाव रखें और किसी को गुणहीन कह करके उससे द्वेष भाव करें, ऐसा जरूरी नहीं है। गुणों को गुण समझें और उनकी सराहना करें, और दोषों को दोष समझ के उनसे दूर रहें, उनकी निंदा न करें। गुणों की प्रशंसा करना और दोषों की निंदा न करना ये आसान तो नहीं है वैसे, लेकिन अब आसान नहीं है जो चीज उसको आसान तो बनाना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। हम चाहते हैं कि इस संसार में सब हमारा सम्मान करें, हमें यश ख्याति वैभव प्राप्त हो गए, माने हम सबके बीच में और श्रेष्ठ और योग्य और बड़े माने जावे। तो भैया बड़े बनने के लिए भीतर टटोल के देखना पड़ेगा कि उत्ती गुंजाइश है कि नहीं। दुकानदार के जाओ और 400 रुपया को सामान चाहने हो, जेब में नहीं है 100 रुपया तो नहीं मिलेगा, तो गुंजाइश देख लो कि भाई बड़े तो होना चाहते लेकिन बड़े होने के लिए काका चाहिए, बगुंजाइश भी तरह की नहीं है, तो फिर थोड़ी गुंजाइश करो, उपाय करो। ये ऊंचा और नीचा जीवन में भाव या कुल कैसे मिलता होगा, मेरे अपने कर्मों के द्वारा मिलता है, उस पर विचार कर लें तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे ही कर्म हमें ऊंचाइयां देते हैं, हमारे ही कर्म हमें लोगों की दृष्टि में नीचा कर देते हैं। परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्यौ नीचैर वृत्युनुत्सेकौ च उत्तरस्य। दो सूत्रों में अपने ऊंच नीच होने के कारण का वर्णन कर दिया। पर आत्मनिंदा प्रशंसा, पर की निंदा करने का भाव, ऐसी चित्त वृत्ति जिसमें कि दूसरे के दोषों पर ही दृष्टि जाती है, वो पर निंदा की प्रवृत्ति है। और ऐसी चित्त वृत्ति जिसमें अपने गुणों को ही देखने का भाव आता है, उसे आत्म प्रशंसा कहते हैं। सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च। अब मुश्किल सिर्फ इतनी है कि पर के दोष देखने की प्रवृत्ति, और दोष देखने ही नहीं उन्हें उद्घाटित करने की प्रवृत्ति अगर हमारे भीतर है, और अपने गुणों को उद्घाटित करने की प्रवृत्ति है, तो ये दोनों प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। ये हमें कहां ले जाएंगे? पतन की तरफ ले जाएंगे। और मजा ये है कि दूसरे के विद्यमान अविद्यमान दोषों को उद्घाटित करना और अपने विद्यमान अविद्यमान दोषों को ढकना, और दूसरे के विद्यमान अविद्यमान गुणों को ढकना, और ये दोनों ही चीज बताइए। दूसरे के तो गुण ढक रहे और दोष उद्घाटित कर रहे, और अपने तो दोष ढक रहे और अपने गुण उद्घाटित कर रहे। ये जो प्रवृत्ति है, चित्त वृत्ति है, वो हमारे लिए नीच कुल में ले जाने वाली, और मिथ्यात्व के साथ ही नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए जब जब भी दोष दर्शन की प्रवृत्ति होवे, तो समझना कि गुणस्थान तो नीचे गिर गया। भले ही आपने बहुत मेहनत करके दृष्टि की निर्मलता, सम्यक दर्शन हासिल किया हो, लेकिन अगर पर की निंदा और अपनी आत्म प्रशंसा का भाव मन के भीतर आया है, तो समझना ये पहले दूसरे गुणस्थान में ही होता है, उससे ऊंचे गुणस्थान में ये प्रवृत्ति नहीं होती। अपनी प्रवृत्ति से पता कर सकते कि हमारे भीतर और हमारे भावों की क्या स्थिति है, ऊंची है या नीची है। बड़ा सावधानी का काम है। विद्यमान और अविद्यमान दोनों, दूसरे, अरे भाई हम तो दूसरे की जोन गलती है सो भी देख रहे, उस वो कह रहे कि जोन है और जोन नैया दो ही की, दो ही नहीं उद्घाटित करना। जोन है वे भी नहीं और जो नहीं है वे भी नहीं। अपने साथ तो मुश्किल है कि जो है सो है और जो नैया सो वे भी निकाल निकाल के देख रहे। जो दोष दूसरे में नहीं है वे भी अपन को दिखते, जो हैं वे तो दिख ही रहे। जब एक बार दोष देखने की प्रवृत्ति हमारे भीतर बन जाती है, तब यही परिणाम होता है। चार चीजें होती हैं जब ये चित्त वृत्ति किसी की हो जाती है। हम सब की है, अनादिकाल का संस्कार है, ऐसा कह के टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा सोच करके आत्मग्लानी तो हो सकती है कि कैसा संस्कार हमने अपना डाल लिया, कैसी चित्त वृत्ति हमारी हो गई। पहली चीज तो ये होती है कि फिर हमेशा दोष देखने की ही आदत पड़ जाती है, संस्कार बहुत मजबूत हो जाता है। एक बार दूसरे के दोष देखने का भाव उत्पन्न हुआ और बार बार वो संस्कार दृढ़ होता चला जाता है। दूसरी चीज, फिर अपने दोष नहीं दिखते हैं और दूसरे के गुण भी नहीं दिखते हैं, ये दूसरी क्षति होती है। एक तो ये होती कि हर जगह दोष दिखने लगते, दूसरा ये होता कि अपने दोष नहीं दिखते और दूसरे के कहीं गुण नहीं दिखते। ये एक मुश्किल हो जाती है। और तीसरी चीज जो होती है सबसे ज्यादा कठिन, वो ये है कि अपने ठीक नहीं होने पर ठीक भी ठीक होने का भ्रम पैदा हो जाता है। अपने दोस्त तो दिखते ही नहीं, इसलिए मैं ठीक हूं, भले ही ठीक न हो लेकिन फिर भी ऐसा भाव आ जाता कि मैं तो ठीक हूं। ये एक और हानि हो जाती। और आखिरी हानि ये होती है कि अपनी निंदा कर ली होती तो थोड़ी ग्लानी होती, दूसरे की निंदा करने में ग्लानी नहीं होती, तो कर्म का बंध घना होता है। पर निंदा में रस आता है, आनंद आता है, और ये जो आनंद है वो रौद्र ध्यान है। और आत्मनिंदा कर ली होती तो धर्म ध्यान हो जाता, तो कल्याण हो जाता। ये चार घाटे एक बार दूसरे के दोष देखने की, भले ही हम कितने ही होशियार बने कि हम तो एनालिसिस कर रहे थे, हम तो जा देख रहे थे कि का चीज कैसी है, ये भैया समर के देखियो मनो, हम तो जैसी है वैसी एनालिसिस कर रहे। सो कर तो रहे आप एनालिसिस, लेकिन भीतर आपके वो चित्त वृत्ति डेवलप ना हो जाए कल के दिन कि आप हर जगह जो है दोष ही देखने लगे और आपको अपने दोष देखने का वक्त ही ना मिले और दूसरे के कभी कोई गुण की आप प्रशंसा ही ना कर पाए, ऐसा मन हो जाए। फिर एक बार दोष देखने की वृत्ति होती तो फिर किसी की प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। इसलिए बहुत संभाल की आवश्यकता है। और अगर इस निंदा में आनंद आने लगे, अधिकांश लोगों को निंदा में, इसलिए निंदा को दसवां रस कहा, नौ रस तो पहले से ही है, ये दसवां रस है, साहित्य का रस नहीं है, ये तो संसार का रस है, साहित्य के नौ रस तो अलग है। तो निंदा में आनंद आता है इसका मतलब है कि आपके भीतर दूसरे के तिरस्कार का भाव है, और वो जो तिरस्कार का भाव है वो हमारे पतन का कारण है। इसलिए ये नीच गोत्र के बंध के जो कारण हैं, इनका विचार करके इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए अपने को। उच्च कुल कौन सा कहलाता, नीच कुल कौन सा कहलाता, सबको कई बार ये चीज अपन विचार कर चुके हैं। जहां रत्नत्तर की परंपरा हो, धर्म की परंपरा हो, और जिस घर में व्यसन्य होता हो उस घर में उत्पन्न होना जी कहलाएगा उच्च कुल। लेकिन धल्लु आचार्य भगवंतों की वाणी है, जहां रत्नत्रय की परंपरा हो, धर्म की परंपरा हो, जहां पर व्यसन से मुक्त जीवन जिया जाता हो, वो परिवार वहां उत्पन्न होना ये उच्च कुल है। और जहां ये सब चीजें हो, रत्नत्रय की परंपरा ना हो, श्रद्धा ज्ञान और आचरण का कोई विवेक ही ना हो, और हिंसा को ही जहां पर धर्म मान लिया जाता हो, और व्यसन जहां पर निरंतर होते रहते हो, उस कुल में उत्पन्न होना लोक निंदित है। सब कहते हैं भाई निंदनीय है, ये कैसी पर्याय है इनकी, ये तो इस तरह से और अपना जीवन व्यसनों में व्यतीत कर रहे हैं। तो वो लोक निंदित, लोक गर्हित जो कुल है वो नीच कुल कहलाता। मिलता कैसे है भैया जी, ऐसे मिलता है कि दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करते रहना। अब बताइएगा कि हम उपाय कौन सा कर रहे हैं। अगर अपने भीतर झांक के देखें तो दिन भर में अपनी आत्म प्रशंसा के और पर निंदा के कितने परिणाम आते होंगे। इसको दूसरे ढंग से कहें तो दूसरे की प्रशंसा सहन न कर पाने के कितने मौके आते होंगे। जब जब दूसरे की प्रशंसा होती तो हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता, जरा विचार करें, देखें अपने अंदर झांक करके। और जब जब दूसरे की निंदा होती है तो अपनी पीठ थपथपाने का भाव होता कि नहीं होता, कि अपन तो अच्छे हैं, उनकी होवे सो होवे, होता है। अगर होता है तो संभालना पड़ेगा भाई जी, चित्त वृत्ति तो ठीक नहीं है जी, हमारे अपने पतन का कारण बनेगी। उपाय क्या है, आचार्य भगवंत कहते कि हमेशा किसी में भी एक गुण दिखाई पड़े तो उसकी प्रशंसा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, और अपने भीतर एक भी गुण दिखाई, अपने भीतर एक भी दोष दिखाई पड़े तो उसको निकालने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए। आलोचना शब्द आचार्यों ने अपनी आलोचना करने के लिए लिखा है, दूसरे के लिए नहीं लिखा। आलोचना और प्रतिक्रमण रोज जीवन में करना चाहिए, स्वयं की आलोचना अर्थात स्वयं के दोषों की निंदा और गर्हा, ये कहलाती आलोचना। दोषों का निवेदन कर देना गुरु के समक्ष जाकर के, ये आलोचना कहलाती। और अपन तो दूसरे के दोष देखते हैं, वो आलोचना वो ठीक नहीं है। तब ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब भी कहीं गुण दिखे, आचार्य महाराज कहते कि चाहे झोपड़ी होए, चाहे रईस आदमी का महल होए, आने जाने का दरवाजा रहता, यानी एक गुण तो सबके पास है, वो गुण देखो और उस गुण की जी भर के प्रशंसा करो। ऐसा ना हो कि एक दोष दिखाई पड़ जावे सो 99 गुणों से वो भारी हो जावे, सो 99 गुण तो दिख नहीं रहे, वो एक ही एक दोष दिख रहा। और होना ये चाहिए कि 99 दोष होवे और एक गुण होवे, तो वो गुण इतना फैला दिया जाए कि 99 दोष एक तरफी हो जाए, जगह ही नहीं मिले उनको। होना तो ये वृत्ति चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो सकता हो। दूसरा अभ्यास ये है कि जब भी दूसरे के दोष देखने की इच्छा जागृत हो तो उसको रोक लेना, दोष नहीं देखना। अरे भाई दिख जावे तो, कहते दिख जावे तो कहना नहीं। एक तो देखने के लिए उत्सुक नहीं होना, और अगर दिख जावे तो उसको कहने की उत्सुकता नहीं होना, और अगर लगे कि कहना तो जरूरी है, तो कहना जरूरी है तो अपनी दृष्टि पहले देख लेना कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए कह रहे कि दूसरे के दोषों को सुधार के ऊपर उठाने के लिए कह रहे उसके दोष, जरूर देख लेना तो फिर काम ठीक हो जाएगा। दोष देखना नहीं, दिख जावे तो कहना नहीं, कहना जरूरी मालूम पड़े तो फिर भीतर झांक के देखना कि कहने की जरूरत क्या पड़ी। अगर ये लगता हो कि ऐसे दोष कह करके इसे मैं नीचा गिरा दूंगा और स्वयं ऊंचे हो जाऊंगा, तो समझना कि ये प्रवृत्ति फिर हमें पतन की तरफ ले जा रही। और अगर ये लगे कि दोष कहना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसमें से ये दोष निकल जावे तो ये उज्जवल हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास में मरीज जाता है और उसके दोष, उसके रोग को डॉक्टर जान करके किसी से कहता नहीं है, मरीज से भी नहीं कहता, मरीज पूछता कि बता तो दो क्या हो गया, कहते कछु नहीं, दवाई खाओ ठीक हो जाए। कभी किसी डॉक्टर ने किसी रोगी के रोग की और 50 लोगों से बाहर चर्चा की हो कि देख लो भैया इनके लक्षण जो होगा इनको, ऐसा तो कभी नहीं सुनने में आता। वो तो उसको औषधि दे करके जब आराम लग जाता है तब कहता कि देखो संभल के जीवन जियो, इतना खतरनाक रोग था वो तो तुम समय से आ गए, सो तुम्हारा उपचार हो गया, अब जरा पथ वगैरह ठीक से किया करे, खान पान में ठीक हिसाब रखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा अगर, तो फिर नहीं बचेंगे प्राण है। और ऐसा ही क्या हम अपने दूसरे के दोषों को रोग नहीं मान सकते क्या? अगर रोग माने तो उनको निकालने का भाव रहेगा और उस व्यक्ति के स्वस्थ होने का हमारे अंदर भाव बना रहेगा। ऐसी अगर दृष्टि होवे तब जाकर के हमारा जीवन ऊंचा उठता है और हम दूसरे के जीवन को भी ऊंचा उठाने में और निमित्त बनते हैं। वरना दोष दर्शन करने से तो क्या होता है, हमारे अपने दोष ही प्रकट होते हैं। दोष देखने वाला स्वयं दोषी ही होता है, दूसरे को नीचे गिराने वाला स्वयं पतित ही है। गिरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को खड़ा नहीं देख सकता, उसको भी गिराने के लिए उसके भीतर भाव उत्पन्न। एक मंडन भट्ट थे, जयपुर नरेश के अच्छे सलाहकार थे, और राजा लोगों की आदत होती कि बहुत जल्दी कौनूं बात सुन के वो निर्णय कर लेते। तो मंडन भट्ट जी का काम था कि वे राजा को ऐसे समय पर और अच्छी सलाह देते थे कि ठहरो राजा साहब, थोड़ा विचार और कर लो, वो बात समझ जाती। तो राजा साहब भी मंडन भट्ट को बहुत पसंद करते थे कि भाई ये अच्छे सलाहकार हैं। एक बार एक शिकायत आई कि राजा जी के जन्मदिन पर जितने भी राज्य में सामंत थे वे सब मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे कि हमारे महाराज दीर्घायु हों। ऐसे मौके पर जो है, और एक शिकायत ये की गई, एक सामंत ने दूसरे की करी, ईर्ष्या थी उसकी उससे, ईर्ष्या जो ने करावे सु कम है, हैं? गुणवान को भी नीचे गिरा देती ईर्ष्या। तो क्या शिकायत करी कि जब सब जने प्रार्थना कर रहे थे एकाग्रचित होकर के, तब जी जो दूसरा वाला सामंत है जी ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहा था, महाराज आपकी आपके प्रति इसके मन में अच्छा भाव नहीं है, नहीं तो आपकी दीर्घायु की प्रार्थना करता, ये तो यहां वहां देख रहा था, और प्रार्थना क्या की होगी इसने। राजा को लगा कि बात तो सही है, एक सुना और निर्णय ले लिया, और कहा कि ठीक है राज दरबार में इस सामंत का आना जाना बंद, पाबंदी लगा दी। मंडन भट्ट को मालूम पड़ा तो राजा से हाथ जोड़ के कहा कि राजा साहब आप एक बार फिर से विचार करो। केति बताओ भाई क्या विचार करना। केति कुछ नहीं, इतने ही विचार तो कर लो आप कि जिस सामंत ने शिकायत करी है वो भी उस प्रार्थना में था कि नहीं। कहते हाँ था, तो वो जब तो उसने देखा होगा। तो कहते जब उसने ये देखा कि फलाना वाला यहां वहां देख रहा, ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहा, तो खुद क्या कर रहा था फिर वो जी, आपकी कर रहा था प्रार्थना को, वो देख ही रहे थे तो उसने भी नहीं की, जीते हो गया। बताइए इससे आशय क्या निकला कि जब जब भी हम दूसरे के दोष देखते हैं तो स्वयं दोषी हो गए कि नहीं हो गए। दूसरे के गुण देखने पर हमें जितना आनंद होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, हमें तो आनंद दूसरे इससे ठीक विपरीत, यानी निरंतर अपने ही दोषों की निंदा करते रहना और दूसरे के गुणों की निरंतर प्रशंसा करते रहना, नीचैर वृत्यनुत सेकौ, और हमेशा विनम्र भाव रहना, अपनी गलती को सहज स्वीकार कर लेना विनम्रता है। दूसरे को गलती मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं अपन, ये अपना अहंकार है, और अपनी गलती सहज स्वीकार कर ले अपन, ये विनय भाव है। और अनुत सेकौ यानी अपना बहुत ज्ञान होने पर भी, अपनी बहुत यश ख्याति होने पर भी, मान सम्मान मिलने पर भी, और मन में कभी दूसरे के लिए नीचा सोचना नहीं, दूसरे का तिरस्कार करना नहीं, और फूल करके कुप्पा नहीं होना कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, तब भी अपनी विनय भाव बनी रहे, ये उच्च गोत्र के लिए कारण होंगे। हमने वर्तमान में रत्नत्रय की परंपरा, धर्म की परंपरा, और व्यसन से मुक्त आचरण की परंपरा जिस कुल में है उस कुल में जन्म लिया है। विचार करो हमने पूर्व जीवन में कैसे परिणाम किए हुए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें ये स्थिति निर्मित हुई है, और आज हमारे परिणामों में कितनी कमी आ गई जिससे कि हम अपनी इस स्थिति को भी मैनेज और मेंटेन नहीं कर पा रहे, बल्कि इससे और नीचे गिर रहे हैं। ये विचार हमें स्वयं करना चाहिए जिससे कि हम अपने परिणामों को आसानी से संभाल सकें। भैया परस्पर में मैंने जो शुरू में कहा था वहीं वापस आऊं कि प्राणी मात्र से मैत्री होवे, सबके प्रति सद्भाव होवे तो कहूं दोष नहीं दिखाई देते। भैया अपनी माँ को अपना बेटा काना भी होवे तो राजकुमार जान पड़ता। किस बात से जान पड़ता भैया? मुंह कह लो, आपके मुंह है, प्रेम भाव है। ऐसा प्रेम भाव प्राणी मात्र के प्रति हो जावे तो सब अच्छे लगे, किसी में कोई भी जो है दोष नहीं दिखाई देगा, और अगर दिखाई भी देगा तो किस दृष्टि से देखेंगे? निकल जावे, क्योंकि हमारा मित्र है। अपने मित्र में कोई कमी होवे तो क्या मित्र पसंद करेगा? वो तो ये कहेगा कि ये भैया वो उसमें गूंगों पता नहीं लगे हमारे मित्र में जो कमी है। पहले नंबर तो कानों कान हमारे मित्र की कमी और तीसरे को न मालूम पड़ जाए, पहली बात, और हमें मालूम पड़ गई सो अब हम भी जो है ढांके रहेंगे इसको, और धीरे से उस मित्र को समझा बुझा करके उसमें से वो गलती निकालने का प्रयास करेंगे। बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि अपन की कचू मने इतने ठेका लेके नहीं आए कि दूसरे को सुधारें अपन, नहीं, अपनी अपनी भाषा में वी जज नॉट। हम यहां पर दूसरे का निर्णय लेने थोड़ी उत्पन्न, हमारे अपने जीवन का हिसाब नहीं बना पा रहे, एक जीवन का दूसरे का क्या हिसाब किताब बना पाए। ऐसा विचार मन के भीतर आ जावे और सबके प्रति सद्भाव हो जावे, वात्सल्य भाव हो जावे, तो फिर हमारे अंदर की दोष देखने की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाती। अपनी प्रवृत्ति अपन को सुधारनी है। एक पिता जिनके एक ही बेटा था, वो व्यसनी हो गया, बड़े दुखी पिता। मां तो हमेशा कान पकड़ के डांटती रहती थी, लेकिन पिता कभी कुछ नहीं बोलते थे। तो सबसे ज्यादा डर बेटे को पिता का लगता था कि जी आदमी खतरनाक है, कहता कुछ नहीं। हां, अरे उनको लगता था उसको कि पिता कुछ नहीं कहते, मैं कुछ भी करूं कुछ भी नहीं बोलते। वो मां हमेशा डांटती रहती तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था वो, लेकिन पिता की तरफ से हमेशा कि अब कहा कहीं कहना दे, मगर वो नहीं कहते थे। जिंदगी निकल गई उनकी, आखिरी मरण का समय आया, पिता ने बेटे को बुलाया, बेटे तुमसे एक बात कहनी है। तो बेटे ने धीरे से कहा कि पिताजी अब तो आप इस जीवन से विदा ले रहे, आपको हमारे बारे में सब मालूम है, वे सब बातें छोड़ भी भर की भर ने कही हो, अब तक नहीं कही सो मरत में भी नहीं कहूं। अरे केले, हम जी इसके लिए थोड़ी बुलाया, जिंदगी भर नहीं कहा, अब जाते जाते क्या तुमसे कहेंगे? हम तो तुमसे ये पूछना चाह रहे थे कि तुम शराब पीते हो तो हफ्ते में कितने दिन पीते? रोज पीते क्या? कहते नहीं पिताजी, रोज थोड़ी पीते, हफ्ते में दो तीन दिन पीते हो। तो भैया हम तो ये कहते कि तुम तो रोज पियो। अरे वाह, जी भी पिता ऐसे मिले, वो मरते समय कह रहे हैं पिता आप कहना क्या चाहते? कहते कुछ नहीं, ये कहना चाहता हूं कि रोज भले ही पियो लेकिन जरा समय बदल लो। तुम रात 8 बजे जाते हो, उसकी जगह थोड़ा सवेरे के समय जाओ, 5-6 बजे जाया करे, मुंह अंधेरे। कहते हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत, अच्छी बात। और कहते पिताजी हमारी थोड़ी संगति भी बिगड़ी है, खोटी संगति में हम जाते हैं। कहते तो कब कब जाते? कहते जब नशा आ जाता है तो चले जाते। तो कहते भाई उसका भी समय बदल लो, सुबह सुबह जाया करें 5 बजे। अच्छी बात है, ये भी ठीक है, ये अच्छे पिताजी मिले हैं। और तीसरे नंबर पर थी भैया को आदत जुआ खेलवे की, सुकेल ले भैया हम मना नहीं करेंगे कि खेलो न खेलो, तुम तो खेला करे, मनो बस इतना है कि एक रजिस्टर बना लो कि इतने हारे इतने जीते, साल भर को हिसाब बना लो अपनों, उसमें क्या दिक्कत। कह ले हाँ ठीक है जे भी, अब आप जा रहे हो आपकी सब बातें मंजूर, तीन ही बातें मंजूर हो गई। अब 13 दिन के बाद पिताजी का जो भी संस्कार था वो सब कर दिया, और बेटे जी 8 बजे जैसे ही घर से जाने के लिए तैयार हुए सो याद आ गई कि पिताजी ने कहा था कि 8 बजे रात को नहीं, सुबह 5 बजे जाना अगर तुम्हें नशा का भाव आ भी जावे तो घर के लोग भी बड़े खुश हुए कि देखो पहने पहनाए कपड़ा तैयार होके उतार दे और घर में ही सबके बीच में और रह गए, चलो लगता है अब सुधर जाएगा लड़का है। मां भी प्रसन्न हुई और भैया जी सवेरे जब 5-6 बजे मुंह अंधेरे गए तो वहां देखा कि जहां जी नशा करते थे वहां पर कुछ और लोगों ने भी नशा कर रखा था, सो ऐसे ही नाली आली में डले थे, वो कुत्ता उनके ऊपर गंदगी कर गया तो भी उनको शुद्ध नहीं है। तब इनको समझ में आया कि भैया अपनी भी यही हालत होती है जब अपन ऐसा करते होंगे, कह ले जी छोड़िए। पर एक दिन में तो जी छूट गई, दूसरे दिन जो है पिताजी के कहे अनुसार जिसकी कुसंगति करते थे सो उसके पहुंचे। सो बड़ी मुश्किल से तो उसने सवेरे 5 बजे दरवाजे खोले और जब दरवाजे खोले और उसका रूप रंग देखा तो इनको बड़ी ग्लानी हुई, कह लगी ये तो हमारी अपनी जीवन साथी की पासंग में नहीं बैठेगी, मैं व्यर्थी आशक्त था। सुबह आशक्ति भी गई, 2 दिन के अंदर 2 व्यसन से मुक्त हो गए, 2 दुर्गुणों से 2 दोषों से मुक्त हो गए और साल भर चला जुआ का काम। सो बाद में जब रजिस्टर मिलान किया सो घाटा ही घाटा ज्यादा था, मुनाफा तो कम था। कह ले भैया जी टोटे की धंधा नहीं करना, हाँ जी टोटे का धंधा नहीं करना। सो साल भर के अंदर वो व्यसन भी वो दुर्गुण भी निकल गया। भैया दूसरे के दुर्गुणों को पर अपने भीतर के दोषों को भी निकालने की एक ही प्रवृत्ति होनी चाहिए कि प्रेम पूर्वक ही निकल सकते हैं। आज तक कोई मां बता देवे कि हमने अपने लड़का को मार पीट के बड़ो बनाओ हो तो बता दे, जब बना है कोई बड़ा तो प्रेम से बना, भीतर हाथ पसार के ऊपर मारा चोट, खोट निकालने के लिए चोट तो करना पड़ेगी लेकिन भीतर हाथ पसार कर प्रेम भाव बना रहे यथावत और फिर उसके बाद दोष निकालने की प्रक्रिया हो, नहीं तो जोर से चोट लगने पर घड़े में छेद हो जाएगा घड़ा, फिर काम का नहीं रह जाएगा। ये सावधानी जब जब भी अपने मन में दूसरे के लिए आवे तो विचार कर लेवे अपन और फिर अपनी प्रवृत्ति को बदलें। और थोड़ी सी बातें लिखी हैं आचार्य भगवंतों ने, वो और आपसे कहें हम, कुल और जाति का मद नहीं करना, पर का तिरस्कार नहीं करना, दूसरे की हंसी नहीं उड़ाना। भाई धर्मात्मा जीवों के लिए भी कभी उनकी निंदा न करना, जिसको अपना गुरु माना उसका अनादर न करना, दूसरे का यश फैलते देख करके और उसके दुर्गुणों को उछाल करके उसका अपयश न फैलाना। और कहते कि स्वयं मिथ्या कीर्ति अर्जित नहीं करना, मिथ्या कीर्ति सब समझते हैं, झूठी यश ख्याति कितने दिन चलेगी, परिणाम और खराब होंगे। इससे अगर बच जाएं तो हम नीच गोत्र से बच सकते। और कहते आत्मनिंदा करते रहना हमेशा, पर की प्रशंसा करना, विनय भाव रखना, दूसरे का सम्मान करना। देखो दूसरे का सम्मान और अपने अहंकार को कम करने की प्रक्रिया में एक उदाहरण हमेशा सामने आता, महाराज कहानी सुना चुके अंजना पवनंजय की, और जब पवनंजय ने तिरस्कार कर दिया अंजना का, तब उसके बाद भी जब युद्ध के लिए जाने लगे तो क्या कहा था, हट दुरीक्षणे, ऐसा शब्द कह दिया था कि मेरे सम्मुख भी मत आओ। और उतना सुन करके भी जब अंजना से कहा कि बहुत दुख तो पहुंचा होगा, काय को तुम दीप में आरती और का दीप सजा करके लाई, सम्मुख नहीं आना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम हमसे कुछ कहा तो, हमसे इतने दिन के बाद बोले तो, भले ही हमारे लिए अब शब्द कहे हैं लेकिन हमारे प्रति उनके मन में अभी भी भाव तो अच्छा है। ऐसा ही अपने जीवन में अवसर आने पर अपन भी अपने थोड़े से अहंकार को गला करके अपनी विनय भाव को बनाए रखें भैया, और जहां तक हो सके दूसरे की अवज्ञा, अनादर, दूसरे की निंदा, इसमें कोई लाभ नहीं है। ये सब चीजें जो देखने में आती संसार में, अपनी प्रशंसा के पीछे, अपनी प्रशंसा करो, लेकिन हमने अक्सर देखा कि दूसरे की छीछालेदारी करके अपनी प्रशंसा करते। बताओ, बड़ी बड़ी सभाएं जोड़ लेंगे और उसमें कहेंगे कि वे वैसे हैं और वे ऐसे हैं, भैया इनकी जी ऐसी, सात सात पीढ़ियों तक को हिसाब किताब बताएं, ये मैं कहा धरो। और अपन सुनते बैठे रहते, निंदा सुनना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो, निंदा करना नहीं चाहिए लेकिन निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। उसमें धीरे से कहीं कब अगर रस आ गया तो अपना ही घाटा होगा। इसलिए भैया अपनी प्रवृत्ति को स्वयं संभाल करके सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए, इसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत वंदो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरे शरणागे सो पावे सुख छे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुति पशु धूप फलार भी कई, परम पूज्य आचार्य श्री गुरु।